पिछले अध्याय में आपने देखा कि सानवी पार्टी में जाती है, जहां उसकी मुलाकात मैडम सोफी डेला क्रुआ से होती है। आर्यन भी पार्टी में आता है और दोनों डांस करते हैं, जहां आर्यन को सानवी की प्रतिभा का पता चलता है। अब आगे, रणबीर कपूरिया और उसकी पत्नी जेसिका ग्रैंड हॉल में प्रवेश करते हैं, जिससे एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है। रणबीर मिस्टर डेला क्रुआ से मिलता है और आर्यन के खिलाफ चुपती बातें करता है। इसके बाद जगत और अनन्या इंद्र के घर जाते हैं, जहां वे जय के साथ समय बिताते हैं और इंद्र को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में याद दिलाते हैं। अंत में आर्यन, सानवी और डेला क्रुआ परिवार आर्यन के घर कॉफी पीने जाने का फैसला करते हैं। नाउ नेक्स्ट। रात का वक्त था, कमरे में हल्की रोशनी थी। जोया ने तकिए की तरफ चेहरा मोड़ रखा था। सारा ने धीरे से पुकारा, क्या हुआ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? जोया का स्वर ठंडा था, क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूं। सारा को पता था कि वजह क्या है, मगर मासूमियत से पूछने लगी, ऐसी भी क्या गलती हो गई मेरी, बता तो दो। जोया अचानक पलटी, आंखों में गुस्सा और हल्की नमी थी। तुमने मेरी शॉपिंग के पैसे अयान से क्यों दिलवाए, क्यों उसे बीच में आने दिया, तुम्हें क्या जरूरत थी? कुछ पल कमरे में सन्नाटा रहा, फिर सारा ने नरमी से कहा, बस इतनी सी बात? अरे तुम्हारा निकाह हो चुका है उससे, तुम्हें इतना बड़ा मसला नहीं बनाना चाहिए। जोया का चेहरा लाल हो गया। मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है, समझे तुम, हम तलाक लेने वाले हैं। सारा ने गहरी सांस ली और होंठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, अगर चाचू को आपसे तलाक लेना होता तो आज आपके बैग उठाकर पीछे पीछे क्यों घूमते? देखा था ना कैसे हर दुकान पर साथ थे, और घाघरा चुनते समय डीप गले वाली चोली छोड़कर दूसरी चॉइस करने के लिए कैसे समझा रहे थे? वो आदमी आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है फूफू। जया का गुस्सा और असमंजस दोनों मिलकर उसे बेचैन कर गए। उसने लाइट बंद कर दी और करवट लेकर सोने का नाटक किया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल के किसी कोने में सारा की बातें गूंज रही थीं। वो बंदा तो पूरी जिंदगी गुलामी करने को तैयार है। अयान अपने कमरे में लेटा हुआ था। काफी रात हो चुकी थी, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों के आगे बार बार जोया का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था, वही मुस्कान, वही नजाकत। उसी के बारे में सोचते सोचते उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इतने में अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नजर डाली, सुनाली, उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड। अयान ने एक पल के लिए ठहर कर देखा, फिर बिना सोचे फोन काट दिया। पिछले 3 महीनों में ना उसने उन लड़कियों को याद किया था, ना ही उनकी कोई कमी खली थी, और आज जब उसकी सोचें जोया में डूबी थीं, तो सोनाली का नाम देखकर उसे अजीब सी चिढ़ हुई। फोन कटते ही तुरंत दूसरी कॉल आ गई। इस बार स्क्रीन पर नाम चमका, विक्रम, उसका वही दोस्त जिसके साथ पहले देर रात तक शराब पीना, नशा करना और पैसों की बर्बादी करना रोज का हिस्सा हुआ करता था। नंबर देखकर अयान झुंझला गया। कमबख्त, अभी भी वही हरकतें। उसने गुस्से में कॉल फिर काट दी। वो जानता था कि अगर फोन उठाया तो वही पुराने बहाने, वही रात की मौज मस्ती का न्योता मिलेगा, मगर आज उसकी चाहत कुछ और थी, जोया के बारे में सोचना, उसके ख्यालों में खो जाना। फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था। अयान बार बार आती कॉल से परेशान हो चुका था। उसने अनदेखा करने की कोशिश की, मगर आखिरकार गुस्से में फोन उठा ही लिया। अयान, खींच कर, हाँ कहो विक्रम, क्या काम था, ध्यान से बोल। विक्रम ने राहत की सांस ली, शुक्र है यार तूने फोन तो उठाया। काम? अरे यार काम वाम कुछ नहीं, बस बहुत दिन हो गए महफिल जमाए हुए, सब दोस्त तुझे याद कर रहे हैं। और सुन, सोनाली भी मेरे पास बैठी है, कह रही थी आज ही अयान से बात करवाओ, तुझसे मिलने को बेकरार है, तेरी बहुत फिक्र कर रही थी। तू जयपुर में क्या कर रहा है, कब लौट रहा है? चल मिलते हैं, एक शानदार महफिल सजाते हैं, विक्रम ने ठहाका लगाते हुए कहा। नया माल भी आया है, अभी अभी फ्रेश, समझ ही रहा होगा। अयान का चेहरा सख्त पड़ गया। उसने बीच में ही विक्रम की बात काट दी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, और प्लीज़ मुझे सोनाली से भी अब कोई मतलब नहीं है विक्रम, समझा करो। और सोनाली, वो तो अभी मेरे पास बैठी है, कह रही थी कि तुझसे आज ही बात करनी है, तेरी बहुत फिक्र कर रही थी। अयान का चेहरा सख्त हो गया। विक्रम, मुझे इन सब बातों में अब कोई दिलचस्पी नहीं, और प्लीज़ सोनाली का नाम मत लेना, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं बचा। इतना कहते ही दूसरी तरफ से आवाज़ बदली, सोनाली ने फ़ोन पकड़ लिया। तो अब तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं रह गया, इतनी जल्दी भूल गए मुझे अयान? अयान की आवाज़ भारी हो गई। मेरा निकाह हो चुका है, और जैसी बातें तुम कर रही हो वो एक शादीशुदा आदमी के लिए ठीक नहीं है, तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सोनाली का स्वर तल्ख हुआ, मगर तुमने तो कहा था कि तुम उसे तलाक देने वाले हो, अब क्या हुआ उस तलाक के प्रोग्राम का? अयान का सब्र टूट गया, उसकी आंखों में गुस्सा था, आवाज़ में ठंडक। उसका नाम जोया है, और सुन लो साफ, मैं किसी को तलाक नहीं दे रहा, समझी तुम, अब मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर अयान ने फ़ोन काट दिया और तुरंत स्विच ऑफ कर दिया। उसका मूड बुरी तरह बिगड़ चुका था। खिड़की के पास जाकर उसने गहरी सांस ली। बाहर सन्नाटा था, मगर उसके भीतर तूफान मचा हुआ था। वो जानता था उसकी पुरानी दुनिया, पुराने रिश्ते और पुराने दोस्त अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रह सकते। जो चीजें कभी अयान की सबसे बड़ी कमजोरी थी, नशा, लड़कियां और दोस्तों की महफिलें, अब वही चीजें उसे जहर लगने लगी थीं। उसे अब सुकून सिर्फ अपने परिवार में महसूस होता था। उसका भाई, भाभी, भतीजे, भतीजियां, माँ पापा सब उसके लिए मायने रखने लगे थे। लेकिन इन सबसे बढ़कर उसके दिल के सबसे करीब अब वो लड़की आ गई थी, जोया। वही जोया जिससे कभी उसे सख्त नफरत थी, जिसे देखना तक वो पसंद नहीं करता था। आज उसी की मुस्कान, उसी की बातें और उसी का ख्याल उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे अयान ने सोचा, सुबह होते ही मुझे डैड से बात करनी होगी। जोया को अब और इंतजार नहीं करवाना, उसे जल्दी ही अपनी दुनिया में लेकर आना है। इस सोच के साथ ही उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वो करवट लेकर आंखें बंद कर गया। दिल में पहली बार एक अजीब सी शांति थी और अगले ही पल वो गहरी नींद में खो गया। रात गहरी थी। वेद अपने कमरे में बेड पर बैठा हुआ था, मगर अकेला नहीं था। सामने कुर्सी पर गौतम मौजूद था। उसकी आंखों में वही तेज और चालाकी थी जैसे किसी कोने में छिपा हुआ शिकारी हो। गौतम ने धीमी आवाज में कहा, अब तो आप सच्चाई जान ही चुके हैं सर, आगे क्या करना है वही बताइए। वेद ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जो करना है मैं पहले ही साफ कर चुका हूँ, होगा वही जो मैं चाहता हूँ, फिक्र मत करो। गौतम हल्का मुस्कुराया, जैसा आप चाहते थे वैसे ही सब होगा। मैंने अपनी टीम बनाना शुरू कर दी है। अभी कुछ गिने चुने लोग हैं, लेकिन हर कोई अपने काम में माहिर है। एक बार पहला काम हो गया, फिर धीरे धीरे और लोग भी आपकी टीम में जुड़ते जाएंगे। वेद ने सिर हिलाया, ठीक है, सुबह पहला कदम उठाना। खैर, काम तो पूरा हो गया था, लेकिन वेद के दिमाग में एक और बड़ी जरूरत साफ थी। वो कुर्सी पर झुकते हुए बोला, गौतम अब एक चीज पर ध्यान देना है, मुझे ऐसी टीम चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए काम करे। पैसों की चिंता मत करना, मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। बस टीम वफादार हो, इंटेलिजेंट हो और मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने वाली। गौतम ने गंभीरता से सिर हिलाया। वेद ने गहरी सांस लेकर कहा, जब मानवी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी थी तब मुझे बहुत महसूस हुआ कि मेरे पास अपने आदमी नहीं है। ऐसे लोग चाहिए जो बिना आवाज किए, बिना शक जगाए चुपचाप मेरा काम कर सके, समझ रहे हो ना? गौतम ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, समझ गया सर, इस बार जो टीम बनेगी वो सिर्फ आपकी होगी, वफादार और 100% भरोसेमंद। वेद की आंखों में चमक उभरी। उसे पता था कि इतना बड़ा बिजनेस अकेले संभालने के लिए सिर्फ दिमाग और पैसे काफी नहीं होते, इसके लिए एक बेहद वफादार टीम का होना जरूरी है।
प्लीज मेरी सीरीज पर कॉमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कॉमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और व्यू देना याद रखें।